नंदिनी की ये सलाह सुनकर इप्सिता ने भी धीरे से सिर हिलाया और मन ही मन सोचने लगी कि वो अभिमन्यु से मिलने जाने के लिए घर वालों से परमिशन कैसे लेगी, वो भी सगाई के अगले ही दिन। इप्सिता ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन हम वहां अकेले कैसे जाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलना। नंदिनी ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, मैं वहां तुम दोनों कपल्स के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती, तुम अकेले ही जाओ। इप्सिता ने जिद करते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो तुम, और वैसे भी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, इसी बहाने तुम भी अभिमन्यु से मिल लोगी। नंदिनी ने सीधे मना करते हुए कहा, जीजू से तो मैं बाद में भी मिल लूंगी, लेकिन कल तुम अकेले ही वहां जाओ, और वैसे भी मैं अपनी मौसी से मिलने जा रही हूँ, वो यहीं पर रहती हैं, अब जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो उनसे मिल लेती हूँ, और वैसे भी जब हमारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो फिर कहीं आने जाने का समय नहीं मिलेगा। नंदिनी की बात सुनकर इप्सिता कुछ सोचने लगी और उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं अकेले ही चली जाऊंगी। नंदिनी ने इप्सिता की बात सुनते ही उसे गले लगाते हुए कहा, ये हुई ना बात, वहां जाकर जीजू से सारी बातें करना और वहां पर जो कुछ भी हुआ हो मुझे सब कुछ डिटेल में बताना। तुम दोनों ने वहां पर क्या क्या बातें की, क्या खाया पिया, मुझे सब कुछ जानना है, ओके? नंदिनी उसके बगल में लेटते हुए बोली, और अब आराम से सो जा, वरना सुबह फ्रेश महसूस नहीं करोगी। इप्सिता नंदिनी की बातें सुनकर कुछ नहीं बोली, उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही पता नहीं क्यों उसकी आंखों के सामने अभिमन्यु का चेहरा आया और वो अनजाने ही अभिमन्यु के बारे में सोचने लगी। इप्सिता ने मन ही मन कहा, क्या मेरा कल उनसे मिलने जाना ठीक रहेगा? उन्हें उनके ऑफिस जाकर सरप्राइज देना, ये कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा? लेकिन उन्होंने मेरी इतनी बड़ी मदद की है तो उसके लिए इतना तो बनता ही है। और वैसे भी सही कह रही है नंदिनी, आज नहीं तो कल हमारी शादी होने वाली है, तो फिर मिलने में क्या बुराई है? मुझे नहीं लगता अभिमन्यु को इससे कोई परेशानी होगी। ये सारी बातें सोचते सोचते इप्सिता को पता नहीं कब नींद आ गई और सगाई की थकान के कारण वो गहरी नींद में सो गई। अगले दिन सुबह इप्सिता की आंख नहीं खुल रही थी। नंदिनी ने उसे उठाते हुए कहा, ईशु उठ जा, कितनी देर तक सोती रही थी? इप्सिता ने नंदिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ करवट लेकर फिर सो गई। नंदिनी ने उसका कंबल खींचते हुए कहा, कम ऑन ईशु, उठ जा, वरना हम लेट हो जाएंगे, याद है ना तुझे जीजू के साथ लंच पर जाना है? जैसे ही नंदिनी ने ये बात कही, इप्सिता उठकर हड़बड़ाते हुए बैठ गई। उसे इस तरह उठते देखकर नंदिनी ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, इतनी देर से मैं तुझे उठा रही थी लेकिन तू नहीं उठ रही थी, और जैसे ही मैंने अभिमन्यु जीजू का नाम लिया, देख कैसे तेरी आंखों से नींद उड़ गई। नंदिनी की बात सुनकर इप्सिता ने घड़ी में समय देखा, सुबह के 12:30 बज रहे थे। उसने नंदिनी की तरफ देखकर कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? नंदिनी ने जवाब देते हुए कहा, कल की थकान की वजह से शायद हम दोनों ही इतनी देर तक सोते रहे, मैं भी अभी उठी हूँ, थोड़ी देर हो गई है, आंटी जी ने हम दोनों का नाश्ता हमारे कमरे में ही भिजवा दिया था और वो ठंडा भी हो गया है, अब जल्दी से उठो, तुम तैयार हो जाओ। इप्सिता ने नंदिनी की बात सुनी और वो वॉशरूम की तरफ भागते हुए चली गई। थोड़ी देर में वो एक पीले रंग की लॉन्ग फ्रॉक पहनकर बाहर निकली और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। नंदिनी उसे तैयार होते देखकर मुस्कुराते हुए बोली, लगता है बहुत जल्दी है तुझे अभिमन्यु जीजू से मिलने की, है ना? इप्सिता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तू बेकार की बातें मत किया कर। नंदिनी ने उसे छेड़ते हुए कहा, चाहे तो दूसरों से कितना भी झूठ बोले ईशु, मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। नंदिनी इतना बोलकर मुस्कुराने लगी। तभी इप्सिता ने कहा, नंदिनी हमने ये तो सोचा नहीं कि हम मम्मी पापा को क्या बताकर जाएंगे। नंदिनी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, आइडिया, मैं अपनी मौसी के यहाँ तो जा ही रही हूँ, एक काम कर तू भी मेरे साथ चल और आंटी से बोल देना कि तू मेरी मौसी से मिलने जा रही है, मैं भी आंटी से रिक्वेस्ट कर दूंगी, फिर हम एक साथ ही यहाँ से निकल लेंगे। इप्सिता ने जल्दी से नंदिनी को गले लगाते हुए कहा, अरे वाह यार, तू कैसे हमारी सारी समस्याओं का फटाफट समाधान निकाल लेती है। नंदिनी इप्सिता को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो तुझे हमेशा कहती रहती हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। इप्सिता नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, तू तो मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट और बुद्धिमान है। इतना बोलकर इप्सिता ने अपना मोबाइल फोन उठाया और संजय को कॉल करते हुए बोली, हेलो संजय अंकल, कार रेडी करिए, हम बाहर चल रहे हैं। इतना बोलकर इप्सिता ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद नंदिनी और इप्सिता फटाफट तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। उन्हें बाहर निकलते देख सुहासिनी जी, जो हॉल में बैठकर किसी से बात कर रही थी, इप्सिता और नंदिनी को एक साथ सीढ़ियों से उतरते देख फोन पर बात करते हुए बोली, ठीक है, बाकी की सारी बातें डिस्कस करके हमें बता दीजिएगा, हम आपसे बाद में बात करते हैं। इप्सिता और नंदिनी को देखकर सुहासिनी जी ने तेज आवाज में कहा, क्या बात है, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है तुम दोनों की? इप्सिता ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मॉम, नंदिनी की मौसी यहीं पास में ही रहती हैं, तो नंदिनी उनसे मिलने जा रही थी, तो उसने मुझसे कहा कि मैं भी उसके साथ चलूं और उसकी मौसी से मिल लूं। इप्सिता की माँ ने उसे मना करते हुए कहा, लेकिन बेटा आपका इस तरह से घर से बाहर जाना ठीक नहीं है। आपकी मंगनी हो चुकी है और वैसे भी कल के फंक्शन की वजह से आप काफी थकी होगी, आज ही जाने की क्या जरूरत थी। नंदिनी ने सुहासिनी की तरफ देखकर कहा, अरे आंटी मेरी मौसी का घर ज्यादा दूर नहीं है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, प्लीज ईशू को मेरे साथ जाने दीजिए। नंदिनी के इतनी रिक्वेस्ट करने पर सुहासिनी जी ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है जाइए इप्सिता आप नंदिनी के साथ, लेकिन ज्यादा देर मत करिएगा और हमारे फोन का तुरंत जवाब दीजिएगा। इप्सिता ने अपनी माँ की बात सुनते ही उसे जल्दी से गले लगाते हुए कहा, ओके मॉम थैंक यू सो मच चलते हैं। नंदिनी और इप्सिता वहां से जा ही रही थी कि सुहासिनी जी ने इप्सिता को रोकते हुए कहा, एक मिनट इप्सिता रुकिए और हमें ये बताइए कि आप संजय को अपने साथ ले जा रही हैं। इप्सिता ने सिर हिलाते हुए कहा, यस मॉम हम उसे अपने साथ ले जा रहे हैं, ओके बाय टेक केयर। नंदिनी ने इप्सिता का हाथ पकड़ा और वो दोनों तेजी से हवेली से बाहर निकल आईं। संजय पहले ही कार गेट के सामने लाकर खड़ी कर चुका था। उसने इप्सिता और नंदिनी को आते ही कार का गेट खोला और वो दोनों कार में बैठ गईं। इप्सिता ने कार में बैठते ही कहा, संजय अंकल नंदिनी को उसकी मौसी के घर छोड़ दीजिए, उसके बाद हमें कहीं और जाना है क्रमशः।